أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ نے ایک بار پھر موقع دیا اور اللہ کرے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. دور قرآن 2023، DQ 2023. آج ہم اس میں 18واں پارہ قد افلح اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم الحمدللہ اس میں پوری سورت مومنون کر چکے، پھر اس کے بعد سورت نور کر چکے، اور اب ہم اس میں سورت فرقان شروع کریں گے. پورے پارے کا تھیم کیا تھا؟ تشیع الفاحشہ سے پاک معاشرہ. ایک خواب ہے، اللہ ہمیں اس کو دیکھنے والوں اور اس کی تعبیر میں حصہ ڈالنے والوں میں شامل کرے، اور قیامت کے قریب یہ خواب ضرور پورا ہوگا. پوری دنیا پہ اللہ کا نام بڑا ہوگا، لوگوں کو لفظ مسلم اچھا لگے گا، اور مسلمان ہونا یا ایک سجدہ خیر من الدنیا و ما فیہا ہوگا. آپ میں نہیں ہوں گے اس وقت، اگر تو اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ ڈال دے. ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کیا کریں کہ آنے والے دور والوں کے لیے مجھے ایک رحمت بنا دے. آئیے دیکھتے ہیں سورۃ فرقان کیا ہے، حق اور باطل کا فرق. اس میں آپ کو تقابل بہت ملے گا، کیونکہ چیزیں اپنے تقابل یعنی اپوزٹ چیز کے ساتھ سمجھ آتی ہیں. خوشی نہ پتہ ہو تو غم کا پتہ نہیں چلتا، رات نہ دیکھی ہو تو دن کا نہیں پتہ چلتا. تھیم جو ہے نا اس پوری سورت کا، وہ ایمان بالرسول ہے. رسالت کے خلاف جو کچھ وہ کر سکتے تھے نا انہوں نے کیا، بلکہ میں آپ کو ہنٹ دے دوں کہ توہین رسالت کی کیا سزائیں ہیں. اور اگر آج کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے تو امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے. اور اسی طرح کی باتوں سے بھرا ہوا یہ پارہ ہے، اور خاص طور پہ سورۃ فرقان. دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پہلی نو آیات 1-9، رکوع نمبر 16 ہے. رب کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، یہ اس کا ٹاپک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز کتنا خوبصورت ہے نا، تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ. اور سورت ملک بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے، تبارک الذی. تو گویا کہ کچھ برکتوں کی باتیں ہیں اس میں. بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. اسی اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی ساتھی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرایا ہے. ان لوگوں نے جن کو اللہ کے سوا اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں. اور کفار نے یہ کہا، یہ تو بس ایک جھوٹ ہے گھڑا گھڑایا، جس پر اور بھی لوگوں نے اس کی مدد کی. آپ گنتے جائیں نا تو آپ کو اللہ کے نبی کا درد محسوس ہوگا کہ کیسے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ سامنے بٹھا کر آپ کو باتیں سنا رہے تھے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی مجنو کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی ایک بات پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سر سے پاؤں تک یعنی سر تسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں. یعنی ایک ہی بات ہے، بس صبح بھی یہی، شام بھی وہی. آج بھی لوگ قرآن کا اثر اور قرآن کی تاثیر کم کرنے کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بس سب کو پتہ ہے، ہر سال سنتے ہیں. اب کتنے کو دورہ قرآن اور کریں گے، اب کتنے کورس اور کروں، میں نے وہ 10 سال پہلے کورس کر نہیں لیا تھا. بھائی آپ نے کھانا بھی کھایا تھا پچھلے ہفتے، پھر کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ کو جو چیز پسند ہوتی ہے اب تھوڑے دن کے بعد کیوں کہتے ہیں کہ اب یہ بنا لیں؟ تو جن کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے نا، وہ اس کتاب کے بارے میں کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جو ہم یہاں سن رہے ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ جب قرآن سے محبت نہیں ہوتی نا تو انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا چیز ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو لے رہے ہوتے ہیں ان کو کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ مجھے فیڈ بیک اور لوگوں کے اور ماشاء اللہ جو اسٹوڈنٹس کا اتنا خوبصورت شکل میں فیڈ بیک پہنچتا ہے، پھر ان کی آڈیوز، پھر ان کی بنائی ہوئی ایکٹیویٹیز سے پتہ چلتا ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو چھوڑتا ہے نا، یعنی جو نہیں لے رہا، उसको नहीं पता लगता मैं क्या छोड़ रहा हूँ। क्या खुलासा हुआ? लेने वाले को पता चल रहा होता है मैं क्या ले रहा हूँ, लेकिन छोड़ने वाले को नहीं लगता, बल्कि वो कहता है छोड़ो, अच्छा है अब अपना भी कुछ करो, अब तो वैसे आखिरी रातें शुरू हो रही हैं और हो गई हैं और हो जाएंगी, तो फिर मैं ये ना कर लूँ वो ना कर लूँ, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह में टेस्ट लगा दें। कुछ लोगों को शॉपिंग का क्रेज़ होता है, कुछ को पकाने का क्रेज़ है, कुछ को अपने आप को सजाने संवारने का है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस किताब का क्रेज़ हो जाए और क्रेविंग होने लगे और हम इस किताब के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लें। आगे देखिए आयत 7, और उन्होंने कहा ये कैसा रसूल है। अब जरा ना मेरी टोन से समझिएगा कि वो किस टोन में बात कर रहे होंगे। ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, और इसके बस कोई फरिश्ता भी नहीं भेजा जाता कि वो भी इसके साथ होकर डराने वाला बन जाए। यानी उनको समझ नहीं आ रहा कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे मान लें, या इसके पास कोई ख़जाना ही डाल दिया जाता। भाई उसने कहा कि मेरे पास ख़जाने हैं, अच्छा, या फिर इसका कोई बाग ही होता जिससे ये खाता। उसने कब कहा है कि मैं लैंड लॉर्ड हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं ज़मींदार हूँ? उसने तो बेचारे ने कभी तुम्हें ऐसी कोई बात ही नहीं कही। और इन जालिमों ने कहा तुम ऐसे आदमी के पीछे हो लियो जिस पर जादू कर दिया गया। उनको समझ नहीं आती थी कि नबी के पास इतने लोग आते क्यों हैं, नबी के अंदर खूबी क्या है। क्योंकि मोमन ये जितनी चीज़ें देखी ना, ऐसी चीज़ें जमा हो जाए ना जिसको हमारे यहाँ कहते बड़े लोग, तो उनके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो जाती है। कोई चाय पीने वाले, कोई तारीफ़ें करके साइन कराने वाले, कोई इधर जाओ उधर जाओ, कहीं सिफारिश करा लेंगे, और कुछ नहीं तो लोगों को कह देंगे जी इन बड़ों के साथ हमारा ताल्लुक है, ज़रा रोब रहेगा। इसके पास क्या है? याद रखिए ये कुरान के ग्लासेस लगे ना फिर समझ आता है कि दीनदार के पास क्या है, उससे पहले नहीं समझ आता। ख्याल तो कीजिए कि ये लोग आपकी नस्बत कैसी कैसी बातें बनाते हैं, बस जिससे खुद ही बहक रहे हैं और किसी तरह राह पर नहीं आ सकते। क्या आपने मैंने इतनी बातें सुनी? और अगर लोग हमें ये कहे दीवानी, मजनून, पागल, ये वो, तो अगले दिन देखिए ज़रा कितना रोते हैं, नाक भी बह रही होगी, आंसू भी गिर रहे होंगे, हिचकियाँ भी होंगे, और कहेंगे बस बस मैं नहीं ये काम कर सकती। मैंने आपको कई दफ़ा ये जुमला भी के दौरे कुरान में बोला कि तबलीग बड़ा नाजुक काम है। कमज़ोर दिल के लोग, हसास लोग, सेंसिटिव लोग ये काम ना करें, पीपल प्लेयर वाले लोग ना करें। हदीस सुन लीजिए, पहली आयत पे अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले किसी को न दी गई थी, 1 महीने की मुसाफत से रोक के ज़रिए मेरी मदद की गई, और तमाम ज़मीन मेरे लिए सजदा का और पाकी के लायक बना दी गई। बस मेरी उम्मत का जो इंसान नमाज के वक्त को जहाँ भी पाले इसे वहाँ ही नमाज अदा कर लेनी चाहिए, और मेरे लिए गनीमत का माल हलाल किया गया, मुझसे पहले ये किसी के लिए भी हलाल ना था, और मुझे शिफात अता की गई, और तमाम अंबिया अपनी अपनी कौम के लिए मबूस होते थे, लेकिन मैं तमाम इंसानों के लिए आम तौर पर नबी बनाकर भेजा गया हूँ। क्या पता चला कि जो मर्जी कहते रहे, जो नबी की शान है वो है। आप देखिए कि सूरज को कोई चिराग दिखाए तो क्या फ़ायदा, कोई सूरज की तरफ थूकेगा तो अपने मुंह पे थूक पड़ेगा। तो इस सूरत में नबी सल्लम की रिसालत के जवाब, दलाइल, और आपको लोगों से जो बातें सुननी पड़ी उसका तस्करा, आपके मेरे लिए अमल की बात क्या है, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए उसकी सिफात पे गौर व फिक्र करना है, अल्लाह ताला की ज़ात से मजबूत ताल्लुक़ कायम करना है, कुफर नहीं करना, और अल्लाह ताला को नफ़े नुकसान का मालिक समझना है, जुल्म और झूठ नहीं इख्तियार करना, और बहक नहीं जाना। आगे आखिरी आयत है पारे की 10-20, रुकू 17, परहेजगारों के लिए हमेशगी के बाग हैं, तबारक अल्लज़ी इंशा। नोट करिएगा इस सूरत में कितनी दफ़ा लफ्ज़ तबारक आता है। अल्लाह ताला ही तो ऐसा बबरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात अनायत फरमा दे जो इनके कहे हुए बाग से बहुत ही बेहतर हों। यानी ये जो आप पे इल्ज़ाम छाँटते हैं तो अल्लाह तो उससे बहुत ज़्यादा दे सकता है नबी को, जिसके नीचे नहरें लहरें ले रही हों और आपको बहुत से पुख्ता महल भी दे दे। बात यह है कि ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं। असल पिन पॉइंट जो है, सारी बेअमली और सारी मस्तियाँ और हर किस्म की गुमराही, इसके पीछे बुनियादी चीज़ वो है कि ये क़यामत को झूठ समझते हैं। और हम आगे करेंगे ना बात, वक़ाल लज़ीन ला यरजून लिक़ाना। देखिए एक दफ़ा यकीन आ जाए कि अल्लाह से मिलना है तो बंदा सीधा हो जाए। और क़यामत के झुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, जब वो इन्हें दूर से देखेगी तो ये इसका गुस्से से बिफरना और धाड़ना सुनेंगे। और जब ये जहन्नुम की किसी तंग जगह में मुश्के कस कर फेंक दिए जाएंगे तो वहाँ अपने लिए मौत ही मौत पुकारेंगे। कभी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ जले हुए लोगों को रखा जाता है, कोई इमरजेंसी वार्ड, उसको जहन में लाइए। उसके करीब से पैसे जिससे भी गुजरे ना, तो आवाज़ें आ रही होती हैं रोने धोने की, जहन्नुम में और क्या कह रहे हैं, काश हमें मौत आ जाए, डॉक्टर साहब एक टीका लगा दें, इंजेक्शन लगा दें, मुझे मौत आ जाए, मुझे सुला दें। इनसे कहा जाएगा आज एक ही मौत को ना पुकारो, बल्कि बहुत सी अमवात को भी पुकारो। आप कह दीजिए कि ये बेहतर है, बताओ ज़रा इंजाम अच्छा लगा, मज़ा आया तुम्हें, या वो हमेश की वाली जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया था, जो इनका बदला है और इनके लौटने की असल जगह है, वो जो चाहेंगे इनके लिए वहाँ मौजूद होगा हमेशा रहने वाले। ये तो आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिले तलब है, यानी जिसको जाके वहाँ पूछ लो। क़यामत के मंजरों में से एक मंजर, और जिस दिन अल्लाह ताला इन्हें और सिवाय अल्लाह के जिन्हें ये पूछते रहे हैं जमा करके पूछेगा, क्या मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया या वो खुद ही गुमराह हो गए, यानी वो जो सारा इल्ज़ाम इन पे लगा रहे हैं, तो अल्लाह वो बड़ों को यानी जिनको ये फॉलो करते थे या ब्लाइंड फेथ था या जिनके पीछे आंखें बंद करके चलते थे, उनसे पूछेगा इधर आओ ना ज़रा, ये बताओ कि ये तुमने इनको कहा था कि ये करना और वो करना हमारे बाद। और आप यहाँ ज़रा नोट भी करिएगा ना कि वो लोग जो इस वक्त उस हाल में, उनके दिल की कैफियत क्या होगी उस वक्त, क्या तुमने इनको मेरे बंदों को गुमराह किया था या ये खुद ही राह से गुम हो गए। अब ज़रा जवाब सुन के इसको बड़ा बड़ा लिख कर ऐसी ऐसी जगहों पे लगवा दीजिए जहाँ लोग गैरों के साथ ये कुछ कर रहे होते हैं जो अल्लाह के साथ करने की ज़रूरत है। वो जवाब देंगे कि तू पाक ज़ात है, खुद हमें ही ये ज़ेबाना था। बिल्कुल वही अंदाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इख्तियार करेंगे क़यामत के दिन, और कहाँ पड़ा, सूरह मायदा के आखिर में, बिल्कुल वही अंदाज, अल्लाह मुझे ये कहाँ सूट करता है, इट डजंट सूट्स मी, ये मुझे लायक ही नहीं कि तेरे सिवा औरों को अपना कारसाज बनाते। बात यह है कि तूने इन्हें और इनके बाप दादाओं का सूदगियाँ ता फरमाई, यहाँ तक कि वह नसीहत भुला बैठे, ये लोग थे ही हलाक होने वाले, तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुठलाया। अब ना तो तुम में अजाबों के फेरने की ताकत है ना मदद करने की, तुम में से जिसने जुल्म किया हम इसे बड़ा अजाब चखाएंगे। हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे सब के सब खाना खाते थे, इल्ज़ाम थे ना, पहला इल्ज़ाम ये था कि ये कि याकुलु ताम, आज भी लोग देखे, आप देखिए मौलवी का खाना कितना मशहूर है, किसी फाजिर का नहीं, वो कोई कम खाते हैं, एक हाथ से बर्गर, दूसरे में चिप्स, तीसरे हाथ होता तो उसमें कोक पकड़ी होती, उधर आइसक्रीम उधर कॉफ़ी के सिप, गरम गरम कॉफ़ी में आइसक्रीम डाल के खा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, यानी अंदर ग्राज जैसो तेलापन है दीन के साथ, तो ये खाना बड़ा खाते हैं। और ये सारे लतीफ़े फाड़ के फेंक दीजिए जो मौलवी के लफ्ज़ के साथ बने हुए हैं। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, कहता है यस ये कोई बुरी बात है, अगर खाना खाना बुरी बात होती तो ये सारी खाने पीने की शरीयतें और ये सारे हलाल हराम के सारे बातें किसको बताई गई, और बाजारों में भी चलते फिरते थे, यस नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कैसे, अल्लाह के नबियों ने तिजारत की और कपड़े का काम किया और क्या कुछ ना किया, और हमने तुम में से हर एक को दूसरे की आजमाइश का जरिया बनाया, अतस्वीरून क्या तुम सब्र करोगे, नहीं सब्र आ रहा तो याद रखना तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। इतनी खूबसूरत ये आयत है ना कि इसके ऊपर पूरा एक दर्स दिया जा सकता है, और दिए में माशाल्लाह देने वालों ने। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हमारी आजमाइश हैं और बहुत सारों की हम आजमाइश हैं, और कुछ रिश्ते तो होते ही आजमाइश के, अतस्वीरून बस सब्र की ना, आप तोड़ सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, ना जी सकते हैं ना जा सकते हैं, तो ऐसे रिश्तों में क्या किया जाए, क्या करें, किधर जाएं, ना वापसी का रास्ता है, तो तस्वीर सब्र करो, एक दिन आएगा कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सारे सब्र के बदले देगा। एक हदीस है इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से आयत 11 और 12 के मुतल्लिक है, एक मरतबा हज़रत इब्ने मसूद रबी वगैरह को साथ लिए कहीं जा रहे थे, रास्ते में लोहार की दुकान आई, अब वहाँ ठहर गए और लोहा जो आग में तपाया जा रहा था उसे देखने लगे, रबी रहमहुल्लाह का तो बुरा हाल हो गया, अजाब इलाही का नक्शा आंखों तले फिर गया, करीब था कि बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद आप फरात के किनारे गए, वहाँ आपने तन्नूर को देखा, इसके बीच में आग शोले मार रही है, बेसाख्ता आपकी ज़ुबान से यह आयत निकल गई। इसे सुनते ही रबी रहमहुल्लाह बेहोश होकर गिर पड़े। चारपाई पर डालकर आपको घर पहुंचाया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक हज़रत अब्दुल्ला इनके पास बैठे रहे और चारा जुई करते रहे, लेकिन रबी को होश ना आया। हम कैसे गुजर जाते हैं जहन्नम की आयतों से, आखरत की पकड़ से? सहाबा कराम क्यों अल्लाह के इनामात के मुस्तहिक बने? क्योंकि वो मुत्तकी थे, अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते थे, दुनिया में गुनाहों से बचते रहे। लिहाजा अल्लाह जन्नतों में भेज कर इनको इनके वादे जो उनसे हुए थे पूरे करेगा। आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते, क़्यामत को नहीं झुटलाना, अल्लाह ताला का डर रखना है, नसीहत को भूल नहीं जाना, अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होना और अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत नहीं करनी और सब्र करना है, और तोड़ने की बजाय जोड़ने की बातें करनी है, इसलिए कि वजालना बादकुम लिबादिन अदु। पीछे था जहां आदम और इब्लीस का किस्सा था और यहां क्या है, फितना। तो फितनों से बचते हुए अपने आप को इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा पे लेके चलना है तो किसी भी माशरे की तदखीर और वहां तशील फाहिशा को रोकने का कि ये भी तरीका है कि जिस चीज़ को तुम बदल नहीं सकते फिर तुम उससे सरफे नज़र कर लो। यहाँ पे पारा पूरा हुआ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।